नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार नए संस्थान बनाने और देश के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है। श्री प्रधान ने कहा कि ये विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करेगा। विधेयक में असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी है। श्री प्रधान ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत आईएम गुवाहाटी को 555 करोड़ रुपए का कोष प्राप्त होगा।
देशवासियों को, विशेष करके आसाम वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी एकेडमिक ईयर में आईआईएम गुवाहाटी में स्टूडेंट की एडमिशन होगी, प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा।
लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। इसमें इस क्षेत्र के समन्वित नीतिगत समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कई स्टार्टअप डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज में गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि लत पैदा करता है जिससे वित्तीय धोखाधड़ी और ठगी को बढ़ावा मिलता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 130वां संविधान संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक भी पेश किया। श्री शाह ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह सहित एनडीए गठबंधन के कई नेता उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने से पहले सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि सीपी राधाकृष्णन एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति साबित होंगे। छत्तीसगढ़ में 10 महिलाओं सहित 29 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन पर लगभग 55 लाख रुपए का इनाम घोषित था। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक माओवादी को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। उन्हें सरकार कौशल विकास का प्रशिक्षण और कृषि भूमि देगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के इस वर्ष जून माह के रिकॉर्ड के अनुसार 21,89,000 सदस्यों को शामिल किया गया है, जो अभी तक की सर्वाधिक संख्या है। आंकड़ों के अनुसार 9.14% की वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल 2018 में पेरोल डेटा ट्रैकिंग शुरू होने के बाद से अब तक की ये सर्वाधिक संख्या है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 213 अंक बढ़कर 81,858 पर और निफ्टी 70 अंक की बढ़त के साथ 25,051 पर बंद हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस के प्रमुख विद्वानों और थिंक टैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत रूस संबंधों, समकालीन विश्व भू राजनीति और भारत के दृष्टिकोण पर चर्चा की। हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी गई है। हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे। यह टूर्नामेंट इस महीने की 29 तारीख से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।